हेरा फेरी
नहीं चलेगी,
हेरा फेरी
नहीं चलेगी।
इंसाफ के आगे
झुकना पड़ेगा,
इंसाफ के आगे
झुकना पड़ेगा।
भाटी साहब, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करप्शन के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं?
एक बार हमारी सरकार आ जाए, हम सेक्शन 144 लगा देंगे।
सेक्शन 144?
पांच या पांच से ज्यादा आदमी कहीं भी छोटी मोटी करप्शन की बात करते पकड़े गए तो अंदर कर दिए जाएंगे।
What do you mean by छोटी मोटी करप्शन?
मतलब 10-20 करोड़ से कम हेरा फेरी को हेरा फेरी नहीं मानना चाहिए। किसी भी फोरम में, चाहे वो पार्लियामेंट ही हो, 20 करोड़ से कम स्कैंडल पर डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का कीमती समय बर्बाद होता है। अगर कोई मंत्री 10-20 करोड़ खा जाता है तो क्या हुआ? आखिर मंत्री है, कोई स्कूल मास्टर तो नहीं कि स्टेशनरी या चौक खा जाए।
बात तो सही है भट्टी साहब, हम अखबार वालों को भी छोटी मोटी हेरा फेरी की खबरें छापने में मजा ही नहीं आता।
मजे को छोड़ो जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए छोटी छोटी खबरें छापते हुए कि फलां मंत्री ने हवाले में 2 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि फलां मंत्री ने रिश्वत में 1 लाख पकड़ा है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
कई मंत्री तो रेजिग्नेशन भी दे गए हैं हवाला कांड के बाद।
हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हों जिनकी आत्मा ने उन्हें झंझोड़ा हो, बस इतने कम पैसे का आरोप।
मोटी साहब, पैसे कम हो या ज्यादा, हवाला तो हवाला ही है ना। वैसे हवाला ऑपरेटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है?
देखो जी, हवाला ऑपरेटर्स को जैन साहब की गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए। कंप्यूटर युग में उन्होंने इतने पुराने जमाने की डायरियां रखी हुई हैं जिनके कोड ही पकड़े जाते हैं।
चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ ना।
खाक अच्छा हुआ, इतने इतने हमारे सियाने नेता किसी और की बेवकूफी के कारण पकड़े जाएं।
नेता हमारे थे बहुत सियाने, कैसे फंसे ये सब कौन जाने, कैसे फंसे ये सब कौन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने। जिसका भी डायरी में नाम आए, कहते हैं लाखों करोड़ों कमाए, कैसे कमाए ये राम जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने,
जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने।
बरसों से भूखा था नेता हमारा, मिलते ही कुर्सी का इसको सहारा, खा पी के लाखों करोड़ों के डॉलर, लगाया है हेरा फेरी का नारा। ओ, आ, 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 ये तो नसीबों का काम है, हर पन्ने पे लिखा एक नाम है। ये तो नसीबों का काम है, हर पन्ने पे लिखा एक नाम है। किस किसका आएगा नाम जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने। नेता हमारे थे बहुत सयाने, कैसे फंसे ये सब कौन जाने, कैसे फंसे ये सब कौन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने,
जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने, जैन जाने।
भट्टी साहब, कुछ महकमे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ड्राई होते हैं, पैसे खाने का स्कोप ही नहीं होता।
ऐसे लोग जो ड्राई सीट्स पर होते हैं, जो खुश्क पोस्टों पर, उन्हें नॉन करप्शन अलाउंस मिलना चाहिए, ऊपरी कमाई भत्ता।
नेचुरली ऐसे मंत्रियों को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलनी चाहिए ना।
वैसे जो समझदार मंत्री होगा वो ड्राई पोस्ट पर भी कोई ना कोई ढंग निकाल लेगा। आपने वो पुराना किस्सा नहीं सुना?
कौन सा?
एक राजे का एक मंत्री बहुत ही करप्ट था। राजे ने सोचा कि उसे ऐसा काम दिया जाए कि वो करप्शन ना कर सके।
फिर
राजे ने उसे समुद्र के किनारे लहरें गिनने के लिए लगा दिया।
अच्छा, वो तो बेचारा भूखा मर गया होगा।
कहां जी, उधर से एक जहाज निकला, मंत्री ने उसे रोक लिया। राजा का हुक्म है कि इधर से किसी ने नहीं निकलना क्योंकि यहां मैंने लहरें गिननी है।
फिर
क्या, जो जहाज निकलता रिश्वत देके निकलता।
खा जाएंगे हर लहर से पैसा, खा जाएंगे रह जाएंगे वो रह जाएंगे, कानून बनाते रह जाएंगे। खा जाएंगे हर लहर से पैसा, खा जाएंगे रह जाएंगे वो रह जाएंगे, कानून बनाते रह जाएंगे।
भट्टी साहब, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपने क्या सोचा है?
हम 5-5 और 10-10 हजार के नोट छापेंगे ताकि हर्षद मेहता को सूटकेस में 1 करोड़ तो क्या 5 करोड़ डालने में भी कोई मुश्किल ना आए।
भट्टी साहब, आपकी सरकार में सीबीआई का क्या रोल होगा?
सीबीआई दो तरह के काम करेगी। एक तो छिपे हुए ईमानदार लोगों को खोज निकालेगी ताकि उन्हें इम्पोर्टेंट पोस्टों से हटाया जा सके।
और दूसरा काम?
दूसरा वो टॉप करप्ट लोगों के नाम रिकमेंड करेगी ताकि उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा सके।
भाई और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के शिरोमणि भ्रष्ट नेता, यानी कि टॉप करप्ट लीडर। लोहा, तेल, सीमेंट, चीनी, हर एक स्कैंडल में इन्होंने टॉप किया है। मल्टीनेशनल कंपनियों से कमीशन एट कर इन्होंने अपने नाम को देश विदेश में मशहूर किया। इन्हें हम एक हेलीकॉप्टर और एक नोट गिनने की मशीन देकर सम्मानित करते हैं।
एक नेताजी विदेश यात्रा पर चले गए, वहां किसी एक्सीडेंट में उनकी एक आंख जाती रही। उन्होंने वहां पत्थर की आंख लगवा ली। जब वो वापस एयरपोर्ट पहुंचे तो
नेताजी
जिंदाबाद,
नेताजी
जिंदाबाद।
मंत्री जी, वो आपकी आंख का पता चला था।
हाँ, वो मैं एक शोरूम का उद्घाटन कर रहा था तो जब उन्होंने वो शांति के प्रतीक होता है ना कबूतर, तो वो कबूतर उड़ाए तो एक कबूतर मेरी आंख निकाल कर ले गया।
ओहो,
नहीं ओहो वाली कोई बात नहीं, वहां की मेडिकल साइंस देखो। उन्होंने ऑपरेशन किया और झट से पत्थर की आंख लगा दी, और आंख भी ऐसी कि कोई पहचान नहीं सकता कि असली कौन सी है और पत्थर की कौन सी है।
वाह जी वाह।
वाह जी वाह वाली कोई बात नहीं, तुम तो 20 साल से मेरे साथ हो, मेरे पीए हो, हैं? पहचान कर बताओ कि मेरी दाई आंख पत्थर की है या बाई।
दाई आंख?
यार कमाल है, तुमने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया?
नेताजी, दरअसल इस पत्थर की आंख में फिर भी थोड़ी बहुत शर्म है।
भाइयों और बहनों, अगर मुझे आप अपना कीमती वोट देंगे तो मेरा यह वादा है कि मैं आपके इलाके को भारत का स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लोगों को स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन सर, अपने इलाके में तो ना पानी है ना पहाड़, तो आप स्विट्जरलैंड का माहौल कैसे क्रिएट करेंगे?
मैं यहाँ स्विस बैंक की ब्रांच खुलवा दूंगा।
हवाला पार्टी
जिंदाबाद,
हवाला पार्टी
जिंदाबाद।
महाराज महाराज, भट्टी साहब भट्टी साहब, कमाल कर दी, इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, हवाला पार्टी, और हमें बताया तक नहीं।
क्यों, तुमने मेरी पार्टी में फूट डलवानी है?
नहीं भट्टी साहब, मैं तो शुरू से आपका वेल विशर रहा हूँ, मैं आप मुझे पार्टी ज्वाइन करने का एक मौका तो दें।
वैसे तुम यहाँ मुंबई में करते क्या हो भाई?
एक्चुअली मैं यहाँ बहुत से हीरो हीरोइंस का सेक्रेटरी हूँ भट्टी साहब।
अच्छा अच्छा, फिर तो तुम कमीशन लेना अच्छी तरह जानते होगे।
क्या बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले प्रोडक्शन मैनेजर था, तो मेरा तो हर चीज में कट होता था।
अच्छा अच्छा, फिर तो बड़े काम के आदमी हो यार। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो?
इनफैक्ट मेरे फिल्मी कॉन्टेक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं भट्टी साहब, मैं आपको बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार दिलवा सकता हूँ जो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे।
अच्छा, वेरी गुड भाई, फिर ऐसे करो अपने अजीत साहब और अमरीश पुरी साहब से बात करवा दो ना।
क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब, लोग तो बड़े बड़े हीरोज से बात करते हैं, जैसे राज बब्बर साहब हैं, ये अपने राजेश खन्ना हैं, सुनील दत्त हैं, अमित जी हैं, और आप ये विलन्स की बात कर रहे हैं।
यार तुम इमेजिन करो ना, अजीत साहब अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे तो क्या डील होगी हथियारों की। आज तो सिर्फ पुरुलिया में हथियार गिरे हैं ना, कल हर जगह हथियार गिरेंगे।
क्या बात है भट्टी साहब, और वो अमरीश पुरी साहब का क्या बनेगा?
ओहो, कहीं वो हमारे अगर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, कोई नहीं पूछेगा कि पैसा किधर से आया, किधर को गया। हर स्कैम के बाद आवाज आएगी, मुगैम्बो खुश हुआ।
वेरी आइडियोलॉजिकल पार्टी। हाँ भट्टी साहब, एक और बात थी, मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सी वोट्स भी दिलवा सकता हूँ।
तो दिलवाओ ना यार, तुम्हें रखा किस लिए?
ऐसे नहीं भट्टी साहब, आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना इंडस्ट्री के लिए।
मेरी जान हाजिर है दोस्त।
देखिए, डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, डायलॉग राइटर यहाँ आटे दाल के भाव मिलते हैं।
तो फिर मैं क्या करूँ भाई?
आप अपनी कोई कल्चरल पॉलिसी अनाउंस कीजिए कि आपकी अगर पार्टी पावर में आ जाती है तो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे?
हम टैक्स माफ कर देंगे।
दैट्स वेरी गुड। किन फिल्मों का?
जिसमें सेक्स और वायलेंस होगा।
फिर तो जनाब हर फिल्म का टैक्स माफ हो जाएगा।
नहीं यार, अभी भी कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो बिना सेक्स और वायलेंस के फिल्म बना देते हैं।
हाँ वो तो है, तो फिर उन फिल्मों का आप क्या करेंगे?
हमने क्या करना, वो हमारा सेंसर बोर्ड करेगा ना, चुन चुन के साफ सुथरे सीन काट देगा।
क्या बात। अच्छा भट्टी साहब, ये टीवी इंडस्ट्री से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उसके बारे में आपकी क्या?
ये बड़ी गलत धारणा है, बहुत गलत थिंकिंग है। टीवी से फिल्मों को कोई थ्रेट नहीं।
क्या मतलब?
अगर कोई भी थ्रेट है फिल्म इंडस्ट्री को तो वो है कपड़े की मिलों से।
कपड़े की मिलों से?
भाई जिस फिल्म में हीरोइन ज्यादा कपड़े पहन ले, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म ही नहीं उठाते।
और अगर डिस्ट्रीब्यूटर उठा भी लें तो आगे एग्जीबिटर क्या करेंगे? यानी सिनेमा हॉल्स की जो कंडीशन है हमारे देश में आपने देखी है, अगर आपकी पार्टी पावर में आ गई तो सिनेमा हॉल्स के बारे में आप क्या करेंगे?
देखो जी, हम ये कर सकते हैं कि हर पिक्चर हॉल के गेट पर ही धक्का मुक्की का पूरा इंतजाम होगा।
व्हाट डू यू मीन धक्का मुक्की का पूरा इंतजाम?
मान लो कोई भी फैमिली फिल्म देखने आती है, ठीक है ना, तो गेट पर ही ऐसे धक्के लगेंगे कि फादर अगर ए रो में बैठा है तो डॉटर सी रो में, मदर अगर एफ रो में बैठी है तो सन एल रो में।
मतलब दादाजी लोअर स्टॉल में और दादीजी बालकनी में।
हाँ हाँ,
कमाल करते हैं भाई साहब, इस तरह से तो फैमिली एक साथ बैठ के फिल्म देख ही नहीं पाएगी।
भाई आजकल फिल्मों के सीन ही ऐसे होते हैं कि वैसे भी सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के फिल्म नहीं देख सकती।
क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। अच्छा एक और पॉइंट बहुत देर से दिमाग में घूम रहा है कि इतनी महंगी फिल्में बनती हैं, इतना खर्चा होता है, तो लोन के बारे में कुछ?
तो हम लोन देंगे ना फिल्म बनाने के लिए, हम लोन देंगे।
नहीं भट्टी साहब, फिल्म बनाने के लिए लोन नहीं चाहिए।
तो किस लिए चाहिए?
यहाँ तो हर प्रोड्यूसर को हीरो साइन करने के लिए लोन चाहिए। कोई हीरो 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 1.5 करोड़ मांग रहा है, कितनी गलत बात है साहब।
नहीं गलत बात क्या है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हीरो को 1.5 करोड़ तक गिनती आएगी, वो पैसे गिन सकेगा 1.5 करोड़ तक, तभी तो कल हमारी हवाला पार्टी ज्वाइन कर सकेगा।
हवाला पार्टी
जिंदाबाद,
हवाला पार्टी
जिंदाबाद।
बट्टी साहब, आपको मालूम है सीबीआई ने आपको चार्जशीट कर दिया है।
मुझे कैसे चार्जशीट कर दिया भाई?
आप पर ईमानदारी का आरोप लगा दिया उन्होंने।
ईमानदारी का आरोप?
ठहरिए,
ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। सीबीआई को ये चार्ज हर हालत में वापस लेना पड़ेगा।
जसपाल भट्टी हाय हाय, जसपाल भट्टी हाय हाय,
जसपाल भट्टी
हाय हाय, जसपाल भट्टी हाय हाय, हाय हाय।
भट्टी साहब फिक्र न करें, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, कभी वाह वाह तो कभी हाय हाय।
वही तो
हाँ, हेरा फेरी तो हर एक महकमे में है, कभी कोई महकमा टॉप करता है तो कभी कोई।
मैं तो कहता हूँ कि इनका भी आपस में कंपटीशन होना चाहिए, टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस की वीकली रेटिंग आनी चाहिए।
इस हफ्ते नंबर 9 पर है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और नंबर 8 पर आ गया है भाई और बहनों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप अलॉटमेंट का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। तो आइए सुनते हैं गाना नंबर 8।
ब्रोकर पटा के रखना, रिश्वत खिला के रखना, ब्रोकर पटा के रखना, रिश्वत खिला के रखना, कर देंगे साइन खुद ही नेता हमारे सजना। ब्रोकर पटा के रखना, रिश्वत खिला के रखना, ब्रोकर पटा के रखना, रिश्वत खिला के रखना।
बट सब करप्शन भी बस सितारों का खेल है जी।
आपका मतलब फिल्मी सितारों का?
नहीं नहीं, मेरा मतलब किस्मत के सितारों का।
हाँ वो तो है ही ना, अब कई पुलिस वालों की किस्मत इतनी खराब होती है कि सारा दिन उनके पास कोई मुर्गा ही नहीं फंसता।
जिसको चलान करने के लिए रोकते हैं उसके सारे कागज पूरे निकलते हैं।
मन ही मन वो बेचारा पुलिस वाला कितना कोसता होगा उन लोगों को। भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस है।
और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बगैर कागज वाले आदमी का स्कूटर एंड पुलिस वाले के सामने आकर रुकता है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेईमान आदमियों की सहूलियत के लिए अखबार वालों को करप्शन राशिफल छापना चाहिए।
करप्शन राशिफल?
जैसे मेष राशि वाले ठेकेदार आज के दिन रिश्वत देने से परहेज करें, रंगे हाथों पकड़े जाने की संभावना है।
जैसे कुंभ राशि वाले फूड इंस्पेक्टर दिल खोलकर सैंपल भरें, मोटे मुर्गे फंसेंगे।
कर्क राशि के नेताओं के लिए दल बदलने का शुभ लगन, दूसरी पार्टी वाले अच्छे दामों पर उन्हें खरीदें।
मिथुन राशि के आईएएस ऑफिसर अपनी लिमिट में रहकर पैसा खाएं, उनके मंत्री नाराज हो सकते हैं।
सिंह राशि के बिजनेसमैनों के लिए समय खराब, इनकम टैक्स और सीबीआई वालों के सपने आएंगे।
भाई और बहनों, आइए आज मिलकर अपने देश के उन महान नेताओं को याद करें
जिन्होंने भ्रष्टाचारी के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान की जगह देश को कुर्बान कर दिया।
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कांटे बिछा जाएंगे। लाख क्या चीज है इन हवालों में, हम तो करोड़ों की रकमें भी खा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। हेरा फेरी जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी जिंदाबाद, नेक दिली मुर्दाबाद, ईमानदारी मुर्दाबाद।
हेरा फेरी जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी जिंदाबाद, नेक दिली मुर्दाबाद, ईमानदारी मुर्दाबाद।
इन असूलों की पार्टी बनाएंगे हम, इन असूलों की पार्टी बनाएंगे हम, बेईमानी को आगे बढ़ाएंगे हम,
बेईमानी को आगे बढ़ाएंगे हम।
जो कमीशन भी आएगा अब सामने, उस कमीशन के छक्के छुड़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कांटे बिछा जाएंगे। लाख क्या चीज है इन हवालों में, हम तो करोड़ों की रकमें भी खा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन।